نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم سورة فتح کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعے کے اردو کے بیان میں ہماری کوشش ہے کہ قرآن کے حوالے سے کچھ مذاکرہ ہو جائے اور سورہ فتح کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ آگے گفتگو ہو پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں. ارشاد میں سیقول لک المخلفون من الاعراب ان قریب وہ بدو جو پیچھے رہ گئے کہیں گے آپ سے شغلتنا مالونا اہلونا کہ ہم کو ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے مال نے مشغول رکھا. فاستغفر لنا آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں مغفرت کی بخشش کی دعا کر لیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم اپنے منہ سے اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو حقیقت میں ان کے دل میں نہیں ہیں. قل اے نبی آپ ان سے پوچھیں فمن يملك لكم من الله شيئا اے نبی ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس کے پاس اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں ان اراد بكم ضرا اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اراد بكم نفعا یہ اللہ تم کو نفع دینا چاہے بل كان الله بما تعملون خبيرا بلکہ اللہ تمہارے اعمال پر باخبر ہے. بل ظننتم بلکہ حقیقت یہ ہے تمہارا گمان یہ تھا اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے کبھی واپس نہیں لوٹیں گے الا اہلیہم ابدا اپنے گھر والوں کی طرف. وزین ذلك فی قلوبکم اور یہ یقین اور گمان تمہارے دلوں کے اندر مزین ہو گیا. اور ظننتم ظن سوء اور تم نے برے برے گمان کیے. وکنتم قوما بورا اور تم تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم تم ایسے لوگ ہو جو ہلاکت میں پڑنے والے ہو. ترجمہ سمجھنے کے بعد جو بات چل رہی تھی جو پچھلی بات چلی وہ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرمائی اور وہ جو بیعت صحابہ کرام نے فرمائی اللہ نے اس پہ صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور بیعت کی قسم بیعت جہاد بیعت امارت بیعت خلافت بیعت توبہ بیعت اسلام اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک تو صحابہ کرام کی قربانی کو ان کی ثابت قدمی کو ان کے ایمان کو اللہ نے بیان کیا اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ بھی تھے. وہ دوسرے لوگ کون ہیں تو اس میں چونکہ صلح حدیبیہ کا میں نے پس منظر پہلے بیان کیا تھا وہ چونکہ کئی جمعے پہلے گزر گیا تو دوبارہ سے اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں نبی کا خواب برحق ہے سچ ہے وحی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے تو آپ نے خود بھی ارادہ کیا لیکن چونکہ اس بات کا بھی یقین تھا کہ قریش کے لوگ اتنی آسانی کے ساتھ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے तो मुखालफत भी होगी, टकराव की सूरत भी बनेगी। इसलिए इरादा ये बना कि जरा ज्यादा मजमा हो ताकि उसको रोकना और मुकाबला करना आसान ना हो। तो एक उमूमी ऐलान किया कि उम्रे का सफर है, मदीना और मदीना से बाहर जो दीगर कबाइल मुसलमानों के साथ थे उनमें ऐलान हो गया कि उम्रे का सफर है, जो जाना चाहता है वो चले, और बल्कि एक उमूमी तरगीब दी गई। अब इस मौके पर जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और आपके साथ उम्रा करने का शौक था और अल्लाह के नबी की बात पर यकीन था कि इंशाल्लाह अल्लाह के नबी ने कहा है तुम्हारे की शहादत होगी, वो तो साथ हुए। लेकिन यहां पे दूसरा ग्रोह भी था जो एक उमूमी फजाओं को देखकर बजाहिर इस्लाम में दाखिल तो हो गया था लेकिन हकीकत इस्लाम और हकीकत ईमान से बहुत दूर था, ये मुनाफिकीन थे। अच्छा, मुनाफिकीन वो भी थे जो मदीना में थे, मदीना में रहते थे, और दूसरे मुनाफिकीन वो भी थे जो मदीना से बाहर दीगर कबाइल के अंदर थे, दोनों थे। अब इन लोगों ने आफियत ये समझी कि हम ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि जाने में जो फवायद है वो उनके नजदीक काबिल जिक्र नहीं थे। अल्लाह के नबी की सोहबत ये उस आदमी के लिए कीमती हो सकती है जिसको अल्लाह ने ईमान दिया है। जिस आदमी के अंदर ईमान नहीं है वो अल्लाह के नबी की सोहबत की कदर कीमत को तो नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमरा करना और उसकी फजीलत, उसका अजर और सवाब, उसकी बरकत और नूर, ये उसको मालूम है जिसके पास ईमान है। तो जाने के जो फवायद है ये उसको नजर आएंगे जो जिसको अल्लाह ने ईमान की हकीकत अता फरमाई है, और जाने के जो नुकसानात हैं वो हर उस आदमी को नजर आ रहे थे जिसकी निगाहें असबाब में अटकी हुई हैं, जो असबाब को देख के चल रहा है उसको नुकसान के। भाई अब आप शेर के गुच्छार की तरफ जा रहे हैं, जो आपका इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे आपकी तीन बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं, बदर, उहद, खंदक, और जो अपनी पूरी ताकत और इत्तेहादियों के साथ आपको खत्म करने के लिए मदीना पे हल्ला बोल चुका है, जिससे एक साल डेढ़ साल पहले आप खंदक की जंग लड़ चुके हैं। आप अपने साथियों को लेकर उसके मरकज की तरफ जाएंगे तो वो आपको आने देगा अंदर? तो हर जाहिरबीन आदमी जो असबाब को समझता था वो समझता था कि भाई ये तो नहीं होने वाला, टकराव होगा, और अब से कई गुना बड़े ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करना और उसी के मरकज में जाना और इबादत करने की कोशिश करना, उनको ये खुदकुशी मालूम हो रहा था। तो उन लोगों ने आफियत इसमें समझी कि हम पीछे रह जाए तो ज्यादा बेहतर है, जान बच जाएगी। तो उनके नजदीक अपनी जान, अपना माल, अपने घर वाले ये कीमती था, तो वो पीछे रहने में आफियत समझी। अब जहां पर अल्लाह ताला ने सहाबे इकराम को बयान किया, अब इन लोगों की बात आ रही है जो हुजूर के साथ जाने को पसंद नहीं किया, अब उनको बयान किया, उसको जो अल्लाह ने बयान किया उसको देखिएगा। से यकूल कल मुखल्लफून, अच्छा जो लफ्ज है मुखल्लफ, की बड़ा माना खेज है, जो आदमी अपनी मर्जी से पीछे रह जाए उसको अरबी जबान के अंदर मुखल्लफ नहीं कहेंगे, उसको अरबी जबान के अंदर मुतखल्लिफ कहेंगे। मुतखल्लिफ का मतलब होता है खुद से पीछे रहने वाला। इसीलिए जिस आदमी को पीछे रख दिया गया हो उसको मुखल्लफ कहेंगे। मुखल्लफ का मतलब बनेगा जिसको पीछे कर दिया गया। अगर आप एक बच्चे को सफ में से उठा के पीछे कर देंगे, बेटा पीछे नमाज पढ़ो, तो इसको मुतखल्लिफ नहीं कहेंगे, इसको मुखल्लफ कहेंगे, क्योंकि उसको पीछे किया गया है। बच्चा तो चाह रहा था कि मैं आगे अगली सफ में नमाज पढ़ू, लेकिन आपने क्या किया, उसको मौका नहीं दिया, आप उसको उठा के पीछे भेज दिया, इसको क्या कहेंगे, अल मुखल्लफ है, ये पीछे किया गया, इसको पीछे कर दिया गया। अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन बद्दुओं के बारे में ये नहीं कहा कि सयकूल लकल मुतखल्लिफून, ये पीछे रहने वाले ये बात कहेंगे, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा, सयकूल लकल मुखल्लफून, ये मुखल्लफ जो पीछे रखे गए वो कहेंगे। अब सवाल ही पैदा होता था कि ये बद्दू तो खुद अपनी मर्जी से पीछे रहे, अल्लाह के नबी तो चाहते थे कि साथ में जाएं, तो इनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुतखल्लिफ क्यों नहीं कहा, अल्लाह तआला ने इनको मुखल्लफ क्यों कहा। اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ناپاک وجود کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں, وہ پیچھے رہا نہیں ہے, وہ پیچھے رکھا گیا ہے. وہ خوش ہے کہ میں پیچھے ہوں. اسی لیے قرآن حکیم میں سورۃ طہٰ میں فرح المخلفون, بڑی تعریف ہے, بڑا اشارہ اس بات کی طرف تم خوش ہو رہے ہو. یہ خوشی کی بات ہے, یہ تو غم کی بات ہے, افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ تمہارے وجود اور مال کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, بدوؤں میں سے جو پیچھے رکھ دیے گئے, جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی, ان کے مال, ان کے جسم, ان کی صلاحیت کو اللہ نے اپنی دین کے لیے قبول نہیں کیا, یہ کہیں گے. اچھا بہانے کیا بنائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. شغلتنا اموالنا اہلنا فاستغفر لنا, کہ ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا, مصروفیت تھی, ہم نہیں جا سکے. جملہ ذرا دوبارہ سنیے گا, شغلتنا اموالنا واہلنا, ہمیں ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا. اور یہ جملہ اگر ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو ہر آدمی کے زبان پر ہوتا ہے. آج کوئی مصروفیت آ جائے, آج کل ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, اکثر شادیاں بھگتا رہے ہیں لوگ, جو آدمی کہیں پر کسی دینی کام میں نہ نظر آئے اسے پوچھو, اس کے نزدیک سب سے بڑا عذر کیا ہے؟ یہ گھر میں شادی چل رہی ہے. یعنی شادی کا ہونا ہمارے نزدیک بہت بڑا اور معتبر عذر ہے. اسی لیے جہاں کہیں پر کوئی آدمی کی اگر زد پڑتی ہے تو اگر وہ کسی دینی ترتیب میں ہے, مسجد میں ہے, مسجد میں نظر نہیں آ رہا, کہ جی بس گھر میں مشغولیت ہے, درس میں آتا تھا, پوچھے بھائی آپ درس میں نہیں آ رہے, جی سر گھر میں مشغولیت ہے, جماعت میں جاتے تھے, جماعتوں میں نظر نہیں آ رہے, پوچھو کیا ہوا, جی مشغولیت ہے. یعنی اگر کہیں پر ہماری مشغولیت کا اثر پڑے گا تو ہماری دین پہ اثر پڑے گا. اچھا مشغولیت ہے, دکان تو نہیں کھول رہے ہوں گے آج کل, نہیں, دکان تو کھولنی پڑتی ہے, مجبوری ہے, بچے تو اسکول نہیں جا رہے ہوں گے, مشغولیت ہے, اس کو گھر میں شادی چل رہی ہے تو بچے تو اسکول نہیں جا رہے ہوں گے, نہیں جی بچے تو اسکول جا رہے ہیں, اور دیگر جو ترتیب تھے, باقی جو کام تھے, نہیں وہ تو چل رہے ہیں, تو پھر مسئلہ یہ ہے یہاں پہ تعطل کیوں آ رہا ہے؟ اگر دیگر ساری مصروفیت آپ کی چل رہی ہے, کاروبار میں تعطل نہیں آتا, ملازمت میں تعطل نہیں آتا, بچوں کے اسکول نہیں بند ہوتا, اگر کہیں پہ تعطل آتا ہے اور کہیں پہ وقفہ آتا ہے اور کہیں پہ فرق پڑتا ہے, وہ کہاں پہ فرق پڑتا ہے؟ جو ہماری دینی مصروفیت ہے بجا کیا ہے. یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم منافق ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کامل کی, صحابہ کرام کی اور منافقین کی صفات کو بیان کیا. ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے ترجیحات وہ ترجیحات ہیں جو صحابہ کرام کی ہیں, یا خدا نہ خواستہ ایمان کے کمزوری کی وجہ سے ہماری ترجیحات وہ بن چکی ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک اس زمانے کے منافقین کی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم منافق ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, وہ تو سری منافق تھے, یعنی جن کے دل میں ایمان خالی تھا, ایمان ہی نہیں تھا. یہاں پہ تو بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم منافق ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیحات اور منافقین کی ترجیحات کہیں آپس میں برابر تو نہیں ہو رہی ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کہنے لگے کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہم کو مشغول رکھا, فاستغفر لنا, تو آپ ہمارے لیے دعائے بخشش کی دعا کر دیں. اب یہ بھی ہمارے ایک بہت عجیب بات, دیکھیے اپنا ارادہ نہیں ہے, اپنی کوشش نہیں ہے, اور دعا حضور سے کروا رہے ہیں, تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام مذمت ہے. اب آپ اگر غور کریں, کیا کوئی آدمی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو یہ کوئی قابل مذمت بات ہے؟ اللہ کے نبی سے دعا کروانا تو کیا ہے, بہت انسان کے لیے سعادت کی بات ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کی اس بات کو मजम्मत की जगह पे बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुनाफिकीन की इस हरकत को मदाह की जगह पे बयान नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यही पैदा होगा कि अगर वो आकर अल्लाह के नबी से मगफरत की दुआ करवा रहे हैं तो इसमें मजम्मत की क्या बात है, इसके अंदर कौन सी बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है। उसका जवाब यह है कि यहां पर दुआ करवाना मकसूद ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ अपनी जान बचाना मकसूद है कि भाई आप दुआ कर दें, हम तो अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, हमारी तरफ से तो कभी कोताही और हमारी तरफ से तो किसी किस्म की कोई अपना मुहासबा नहीं होगा, हाँ आप हमारे लिए दुआ कर दें, तो मकसद तो सिर्फ जान बचाना है। तो यह इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम में से बहुत से लोग, तफसील के साथ मैंने अर्ज किया था, हमारा ये ख्याल है कि मशायख और अकाबिर और उलमाए किराम और अपने बड़ों से जो राबिता है उसकी असल हासिल यह है कि हमें कुछ पढ़ने के लिए बता दिया जाए। तो खातून ने कहा कि जी ऐसा कोई वजीफा बता दे, कमेटी जल्दी निकल आए। कहीं के नजदीक दीन हमारे नजदीक मजमुआ बन गया है चंद वसाइफ का, कि कोई मसला बन जाए तो वजीफा पूछो तो हमारा हमारा मसला हल हो जाए। तो असल मकसद क्या है, मकसद यह है कि बस आप दुआ कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े। और अगर ये वजीफा बताओ जी सबसे बड़ा वजीफा क्या है, बताया आप हजरात की खिदमत पे अर्ज किया था, वमा यत्तकिल्लाह यजअल मिन अमरी युसरा, सबसे बड़ा वजीफा तो ये वजीफा है, जो अल्लाह का तक्वा अख्तियार करेगा अल्लाह उसके मामलात को आसान करेंगे। तो सबसे बड़ा वजीफा तो गुनाहों से परहेज है, सबसे बड़ा वजीफा तो गुनाह कबीरा को छोड़ना है, सबसे बड़ा वजीफा तो अपनी जिंदगियों के अंदर से अल्लाह की नाफरमानी को निकालना, फराइज और वाजिबात और सुनन मुअक्कदा को पूरा करना है, सबसे बड़ा वजीफा तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। लेकिन यहां पर इन लोगों की इसी बात को बयान किया कि ये लोग वो बात कहते हैं जो हकीकत में दिल में नहीं है, बस अपने जाहिरी एक भरम रखने के लिए आपसे कहते हैं कि जी आप हमारे लिए दुआ मगफरत करें। इसीलिए आगे कहा यकूलून बी अलसिनती मा लैस फी कुलूबिहिम, अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो हकीकत में इनके दिलों के अंदर नहीं है। ये है दोरंगी और मुनाफिकत। दिल के अंदर तो दुनिया की मोहब्बत और इन चीजों की हमत भरी है, जबान से कहते हैं ये है कि हाँ जी इरादा तो हमारा भी था, चाहते तो हम भी थे कि हम चले जाते, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो गई, हालांकि इरादा कोई भी नहीं है। आगे शायद फरमा कुल फरमा यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम ज़र्रन औ अराद बिकुम नफ़अ, पीछे बात गुजरी थी कि जो आदमी अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत कर रहा है तो वो हकीकत में अल्लाह के साथ मामला कर रहा है। हम किसी भी जगह के ऊपर है, किसी भी के साथ हमारा असल मामला हमारा अल्लाह के साथ है। इसीलिए शेख के साथ भी जो ताल्लुक होता है तो वो असल मामला शेख के साथ नहीं होता, ये अल्लाह के साथ होता है। इसीलिए हमारे से एक बात अक्सर इशात फरमाते हैं कि मुरब्बी हकीकी अल्लाह की जात है, मुरब्बी हकीकी अल्लाह की जात है। अल्लाह सुब्हान व तआला शेख के जरिए से इंसान की तरबियत करते हैं और शेख के दिल के अंदर अल्लाह ताला वो बात डालते हैं जो इंसान की इस्लाह की बात है। और एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है, इंसान को मालूम नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला वो बात कहलवाते हैं जो मजमे की जरूरत है। तो असल मामला अल्लाह अल्लाह के साथ। मौलाना सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मदारे से दीनिया कहने किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल किताबें हैं, अगर किसी भी तालिबे इल्म से जो मदरसे में पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो उसे पूछे कि मुश्किल तरीन किताबें कौन कौन सी हैं, तो वो जो मुश्किल तरीन किताबें मदारे से दीनिया पढ़ाई जाती हैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी की गिनवाएगा कि जी ये किताबें हमको शरा तहजीब है, शरहुल अकायद है, अतौजीब और तलवीब उसूल फिका के अंदर बहुत मुश्किल किताब है, मुख्तसर मानी है इल्मुल बलागा के अंदर बहुत मुश्किल किताब है उनकी। ज़माने तालिब इल्मी के अंदर बेचारे बहुत कुन ज़हन थे। एक दफा किताब खोले पढ़ रहे, बस लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। उसी तरह किताब को खोल कर पढ़ते पढ़ते एक दिन आग लग गई। मेहनत खूब करते थे, ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, और ख्वाब में हुजूर ने पूछा साथ क्या बातें, बड़े परेशान हूं। तो उसे ख्वाब में कहा कि हुजूर क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो हुजूर ने ख्वाब में अपना लुआब दहन लिया, ऐसे जबान से थूक लेके उनकी जबान पे रखा। कहते जब आंख खुली तो जहन खुल चुका था। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दाद बरकातुल आलिया, अल्लाह ने इनको एक अजीब मुकाम दिया। मुझे तो अल्लाह ने उनके साथ बहुत करीबी उस दौर में पढ़ने का मौका दिया जब बहुत बड़ा मजमा नहीं, तब तो माशाल्लाह से हजरत के जो शागिर्द और उनके शागिर्दों के शागिर्द और दीगर, अल्लाह ने खूब उनको एक रौनक अता फरमाई। खुद अपना वाक़ कई दफा बयान किया उस्ताद जी दाद बरकातुम से की जबान से, ये वाक़ कई दफा बयान किया कि मैं चौथे साल में था, चौथे साल में शरह जामी का जाल होता, शरह जामी भी एक मुश्किल किताब है, नहव की किताब हमारे पास पढ़ाई जाती है। तो मैं चौथे साल में था, पढ़ा करता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो बस हो जाते किताबें खोल के बैठा रहता। तो अल्लाह ने खोला, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल दिया तो इस तरह खोला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलूम को रवा फरमा दिया। किस आदमी को अल्लाह किस मौके पर कबूल फरमाएगा इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। हमारे अजीज एक वाक्य बयान करते हैं, हमारे अजीज का भी मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमत बहुत बड़ी शख्सियत, मौलाना इलियास रहमत के अव्वलीन साथियों में से, जिन की हजरत मौलाना इलियास रहमत ने खुद बराह रास्त तरबियत फरमाई, उसमें से हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमत हजरत शेख हदीस मौजी के कांदलवी रहमत के खलीफ मजाज भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत। उनके पास एक आदमी आया करता था, बजाहिर उसका हुलिया को बहुत ज्यादा दीनदार लोगों का नहीं था, मौलाना उनके बड़े कराम करते। हजरत फरमाते हमें बड़ा होता था कि बजाहिर तो इतना दीनदार है नहीं, लेकिन हजरत इसका इतना कराम क्यों करते। तो हजरत के इंतकाल के बाद जाकर उस आदमी के अंदर फिर एक जाहिरी तब्दीली आई। तो किस आदमी के अंदर किस वक्त तब्दीली आ जाए इसका मैं और आपको फैसला नहीं कर सकती। तो खैर बात तो चल रही थी कि हमारा असल मामला किसके साथ है, अल्लाह के साथ। और ये मुनाफिकीन जाहिरी तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी चर्ब जबानी के जरिए से आपको कायल करने और मुसलमानों को कायल करने और मुसलमानों को राजी करने में अपनी कामयाबी समझ रहे हैं और बहुत बुनियादी हकीकत को भूल चुके हैं कि असल मामला किसके साथ है, अल्लाह के साथ। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु ने इरशाद फरमाया, आप देखिए गौर कीजिएगा, कुल फमा यमलिकु लकुम मिनल्लाह शैअन इन अरादा बिकुम ज़र्रन अव अरादा बिकुम नफ़अ। ऐ नबी इनसे पूछिए अगर अल्लाह तुम्हारे बारे में कोई नुकसान का इरादा कर ले, तुम्हारा ये ख्याल है हम पीछे रह जाएंगे, मुसलमान तो जा रहे हैं बड़े खतरे खतरात के अंदर है, एहराम के अंदर होंगे तो लोहे का जो जरा होती है सर के ऊपर लोहे का खोद होता है, ढाल होती है, ये सारा सिपाहियाना लिबास भी नहीं होगा, एक आधा तलवार साथ में होगी, और जा भी रहे हैं उनके पास के वो कील कांटे से लेस होंगे, उनसे मुकाबला भी है, वो तादाद भी इनसे ज्यादा होंगे। 12,000 तो वहां से जब लेकर आए थे तो 12,000 थे, तो जब अपने मक्का मुकरमा का दिफा करना होगा तो पता नहीं कितने इकट्ठे कर लें। तो ये लोग तो जा रहे हैं और बड़े नुकसान के अंदर हैं, हम पीछे रह जाएंगे तो हम अपनी जान और माल को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, ये उनका ख्याल था। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नबी इनसे ही पूछिए अगर अल्लाह तुमको तुम्हारे घरों के अंदर नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले, बताओ कौन है जो तुमको बचा सकता हो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आजकल देख ले पूरी दुनिया के अंदर जो 5 बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनको बिग 5 कहते हैं ना, ये बिग 5 है, लफ्ज बिग भी क्या बता रहे हैं, वो क्या समझते हैं हमारे पास ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत कुछ है। आज देख लिया अल्लाह ताला ने आजिज क्या नहीं किया, जो चीन है और चीन के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है, अल्लाह ने आज आजिज क्या नहीं किया, आजिज करके अल्लाह ने दिखा दिया ये है आपकी ताकत। अब आप अपनी अपनी न्यूक्लियर लेबोरेटरीज को, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी अपनी तदबीर को, सब चीजों को इस्तेमाल कर ले और कोरोना वायरस को खत्म करके दिखा दे। सऊदी अरब ने अभी पाबंदी लगाई कि जी अभी आर्जी तौर के ऊपर हम उम्रे का वीजा नहीं देंगे, जो कुछ भी करेंगे, बाकी लोग भी पाबंदियां लगा रहे हैं। ये आपके अजबाब हैं, ये अल्लाह सुब्हान तआला की ताकत किया है, वो जिस पर चाहे आपको आजिज करके दिखा सकता है। तो ये अल्लाह ताला हमें बार बार दिखा रहे हैं। अच्छा, सब लोग इस बात की तरफ परेशान है कि भाई अब हिफाजती तदाबीर क्या होगी। पाकिस्तान में दो केसेस मिल गए, कराची के अंदर दो केसेस पाकिस्तान के अंदर मिल गए। कराची के अंदर पूरे कल मदारिस भी बंद थे और स्कूल भी बंद थे। अल्लाह अकबर कबीर। आपके स्कूल बंद करने से, मदारिस को बंद करने से क्या होगा? कोरोना वायरस नहीं आएगा? अल्लाह अकबर। ये हमारी तदबीर है। देखो बात, इंसान डरा हुआ कितना है आज। तदबीर के अख्तियार कर रहे हैं कि घर में बैठ जाएंगे। आप घर में बैठ जाए नहीं आएगा, अल्लाह ने भेजना है वो भेज देगा अल्लाह ताला। कराची में इसे मतलब 3-4 साल पहले, पुरानी बात है या शायद ज्यादा हो गया, अरसा हो गया होगा, अल्लाह ने ऐसा हब्स भेजा, ऐसा हब्स भेजा, रोजाना की तकरीबन को 40-50 अफराद की मौत होना शुरू। लोग हम परेशान होते, जोहर में जनाजा, असर में जनाजा, मगरब में जनाजा। एक आदमी पहुंचता, अभी इमरजेंसी पहुंचा, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, करते करते उसकी जान निकल गई। अल्लाह सुब्हान व तआला ये हालात इसीलिए भेजते हैं, इस बात को बताने के लिए कि इंसान की तदबीर कितनी आजिज है, इंसान की तदबीर कितनी नाकिस है, इंसान की ताकत कितनी नाकिस है। ये इंसान की जो हुकूमतें नजर आ रही है, उनके पास जो असबाब नजर आ रही है, जो अफवाज नजर आ रही है, जो असलहा नजर आ रहा है, बहुत आजिज है। अल्लाह की ताकत बहुत, इससे बहुत आगे है। तो ना सवाल किया, आज हमसे भी ये सवाल है, कुल फमन यमलिकु लकुम मिन अल्लाह शैइन इन अरादा बिकुम ज़र्रा, अगर वो अगर नुकसान का इरादा कर ले, कौन है जो उसके नुकसान को टाल सकता है। अरादा बिकुम नफ़ा, अगर फायदा देने का इरादा कर ले। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले अब्दुल्लाह बिन अब्बास या अब्दुल्लाह बिन उमर दोनों में से एक सहाबी को इस तरह दोनों कंधों से पकड़ा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, ए लड़के तुझे चंद बातें सिखलाना चाहता हूं, सबसे बुनियादी बातें जो आपने सिखाई, एहफज हुन्ना, जो बातें सिखा रहा हूं उनको पल्ले बांध लो, जो लफ्ज हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर या पंजाबी के अंदर, इसको पल्ले बांध लो, अपने जहन में बिठा लो इन बातों को। एहफजिल्लाह, अल्लाह को याद रखो, यहफज का अल्लाह तुझे याद रखेगा। एहफजिल्लाह तजीदु तजाहक, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को बिल्कुल अपने सामने पाओगे। वअल्लम, इस हकीकत को समझ लो और जान लो, अन्नल उम्मता, कि अगर सारे के सारे इंसान, लविश्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह लक, सारे के सारे इंसान इकट्ठे होकर तुमको फायदा देना चाहे नहीं फायदा दे सकते, मगर उस चीज का जो अल्लाह ने तुम्हारी लिख रखी है। वअल्लम अन्नल उम्मता, और अगर सारे के सारे इंसान, लविश्तमअत अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन, किसी चीज का नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह लक, वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने पहले से लिख रखा है। रफ़अतिल अक़लाम व जफ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए और सहीफे पहले खुश्क हो चुके, जो अल्लाह ने तय करना था अल्लाह ताला तय कर चुके। ईमान है, तवक्कुल है जो सिखलाया गया। आगे चलिएगा, अब वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। बल्कान अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह तुम्हारे आमाल पर बाखबर है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या कसद है, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारी क्या तरजीह है, अल्लाह जानता है तुमको। दुनिया के इंसानों को बताया जा सकता है, हमारे पास कई दफा लोग आते हैं मसाइल पूछने के लिए, फतावा लेने के लिए। मुफ्ती को जो आप बताएंगे वो मुफ्ती उसके मुताबिक आपको फतवा दे देगा, जितना बड़ा उजर बताएंगे उतनी बड़ी आपके लिए गुंजाइश निकाल के दे देगा। हमारा भी यही काम है, हमारा भी दारुल इफ्ता है, मुफ्ती हजरत बैठते हैं। जितना मर्जी आप उसको बना के पेश करेंगे, जितना बड़ा मसला बना के पेश करेंगे उतनी बड़ी गुंजाइश हम आपको निकाल के दे देंगे शरीयत के अंदर से। एक आदमी कहे मैं 3 दिन से भूखा हूं, मरने के करीब हो गया हूं, खिंजीर खा सकता हूं, मुफ्ती कह देगा जान बचाने के लिए खा सकते हो। अब भूखा है कि नहीं है ये अल्लाह जानता है, इसकी मजबूरी है कि नहीं है ये अल्लाह जानता है। खबीर, मुफ्ती से फतवा लेना आसान है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। हमारा असल मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह ताला ये बात हमको समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। सुभानकल्लाहु बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा।